मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 10 जून 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सोमनाथ चक्रवर्ती पश्चिम मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से और अंकित कुमार, आपका गांव है सनाहा, जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में कुछ बातें करने जाऊंगा। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं या सुरक्षा संबंधी जो हमारी चुनौतियां हैं उनकी उसके बारे में मैं कुछ बातें करूंगा और साथ ही थोड़ा सा प्रकाश मैं इस बात पर भी डालूंगा कि इस टॉपिक की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मालदीव के बाद श्रीलंका पहुंच गए हैं, वहां की बातें भी आपने अखबारों में पढ़ी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां क्या कहा। मालदीव के बारे में भी आप जान चुके हैं। दोस्तों, इन दोनों देशों से भारत के जो संबंध हैं इसके बारे में कुछ समय पहले यानी कि लगभग 3-4 महीने पहले मुझे याद आ रहा है कि मैंने विस्तार के साथ बातें की हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे क्या ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, अब तक के ऐतिहासिक मतलब, और मालदीव के साथ हमारे क्या संबंध रहे हैं, कैसे उसमें उतार चढ़ाव आए हैं और अभी ही जब वहां नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और जो अभी चुनाव जीत करके आए हैं, भारत के बहुत ही पक्षधर हैं, भारत के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उस दौरान मैंने मालदीव के बारे में भी आप सबसे बातें की थी। फिलहाल मैं इतना ही कह के ये बात अब इस टॉपिक पर बात खत्म करूंगा कि इन दोनों देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से, मतलब मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छी तैयारी इस पर करनी चाहिए। अच्छी तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस पर पीएचडी करें, एमफिल करें। एक अच्छी तैयारी का मतलब है कि हर एक एंगल से आपकी एक सामान्य पकड़ होनी ही चाहिए। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो विकासशील देशों के बारे में कही गई है और सच पूछे तो भारत के बारे में तो बहुत ही मौजूद है, और वो ये है कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं और जो लघु और मध्यम उद्योग हैं इनका विकास किया जाना चाहिए। यानी कि जो ये विकासशील देश है इनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने यहां इन उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दें, यानी कि उनकी आर्थिक नीतियों में यह बहुत प्रमुखता के साथ झलकनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, मैं जब हिंदी के अखबार पढ़ता हूं जो भले ही इकोनॉमी से ही रिलेटेड है तो उसमें एक अंग्रेजी का शब्द आता है MSME। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके जेहन में रच बस जाने चाहिए, MSME। इसको आप याद कर सकते हैं, MS जैसे MD डॉक्टर होते हैं तो मास्टर ऑफ सर्जन है तो MS हो गया, फिर मी मतलब मुझे, MSME। इसका जो पहला M है वो है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे। इसके बाद जो S है उसका मतलब है स्मॉल यानी कि छोटे, MS। और फिर जो M है उसका मतलब है मीडियम यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, और जो ई है उसका मतलब इंटरप्राइजेस, आई नहीं है वो, इंडस्ट्री नहीं है, है ना, वो इंटरप्राइजेस है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है उद्यमिता, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उद्योग कहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि MSMI की जगह ये MSME क्यों है, इसलिए मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है ये आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी। और अक्सर जो आप अखबारों में अभी पढ़ रहे होंगे जब डीमोनेटाइजेशन के क्या प्रभाव भारत पर पड़े इसके बारे में, तब उसमें आपको पढ़ने को मिलता होगा कि ये जो MSME हमारे जो इंटरप्राइजेज हैं इन पर डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ, इन्हीं पर क्यों पड़ा, इसके बारे में बेहतर है कि आप सब अपने अपने स्तर पर विचार करें या इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, तब आपको ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। हाँ, यदि मुझे कभी वक्त मिला तो मैं डेफिनेटली इस पर विस्तार के साथ बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर ऐसे समय में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जबकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी देश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, और आपको मालूम है कि इसके लिए तो उन्होंने अलग से मंत्रिमंडलीय समिति भी बना दी है। मित्रों, एक न्यूज आपने और सुनी होगी वित्तीय घाटा को लेकर। वित्तीय घाटा मतलब शेयर मार्केट के संदर्भ में न्यूज थी कि शेयर मार्केट में एक जान आ गई है और लोगों ने बहुत ज्यादा पूंजी बाजार में इन्वेस्ट किया है, और क्योंकि उनको अब यह भरोसा हो गया है कि जो सरकार आई है वो एक स्थिर सरकार है, पहले से जो नीतियां चली आ रही हैं वो लगभग कंटिन्यू होंगी, और अभी जब बजट पेश होगा तो उसमें भी हमारा जो वित्तीय घाटा होगा वो 3.4% के आसपास ही होगा, तो इससे उनका जो उत्साह है भारतीय बाजार के प्रति वह बढ़ा है। ये डेफिनेटली अपने आप में एक डिस्कशन का विषय है, इस पर बहुत अच्छा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि आज मेरे मुख्य विषय में यह शामिल नहीं है इसलिए मैं केवल संकेत करके ही अब अपने आज के मुख्य विषय पर आना चाहूंगा। यह विषय मैंने क्यों चुना, यू कह लीजिए कि सिक्योरिटी का। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा हट करके भी आप लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब आप मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं, भले आपको मैं ये वाक्य कहूं तो बुरा लगेगा, तो ये कोई कथा वाचन नहीं है, ये प्रवचन भी नहीं है, ये बेसिकली एक बौद्धिक विमर्श है। ये बात अलग है कि अनफॉर्चुनेटली यह विमर्श एक तरफा हो रहा है, यानी कि मैं कहता हूं और आप केवल उसे सुनते हैं, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह कोई कहानी में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कोई सामान्य चीजें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई असामान्य बड़ी असाधारण चीजें बता रहा हूं, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं बौद्धिकता से जुड़ी हुई हैं, ज्ञान और सूचनाओं से जुड़ी हुई हैं। जब कोई भी चीज ज्ञान और सूचना से जुड़ी हुई होती है तो सीधी सी बात है कि आपको उसे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहानी किस्से की तरह सुन करके आप उसका आनंद नहीं ले सकते, और ये आनंद लेने की चीज ही नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो ये तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं तनाव मोल लेने की चीज है कि आप कितने अटेंशन के साथ सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर थोड़ी देर के लिए कितनी देर के लिए आप विचार करते हैं, विचार करने के बाद किन चीजों को आप नोट करते हैं, आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं, तब जाकर के सुनने का सही अर्थ निकलता है। अदरवाइज तो ठीक है, आपको 10-15 मिनट मान लीजिए कि डेली ऑडियो लेक्चर अच्छा लगता है, आप लोग लिख करके भेज भी देते हैं और आप सुन भी लेते हैं, लेकिन इनफैक्ट इसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज के करेंट कंटेंट के तहत एक आर्टिकल डाला गया है, आप देखेंगे तो पाएंगे, नई सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियां, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा था। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि सुरक्षा को लेकर हिंदी अखबारों में बहुत कम आर्टिकल देखने को मिलते हैं, और अगर कुछ आर्टिकल्स आते भी हैं तो उसका संबंध कभी नक्सलाइट्स मूवमेंट से हो जाता है, नक्सलवादियों से हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो है ना पुलिस सुरक्षा से हो जाता है, यानी कि पुलिस को कैसे आंतरिक सुरक्षा के लिए और ज्यादा मुस्तैद किया जाना चाहिए। अदरवाइज बाहरी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के चैलेंजेज हैं, जो साइबर चैलेंजेज हैं और जो बहुत सारे चैलेंजेज हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के लेवल पर जो किए जाने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हिंदी में वो पढ़ने को नहीं मिलते। इसलिए मेरा विशेष ध्यान होता है कि यदि इस टॉपिक पर इंग्लिश में कुछ अवेलेबल होता है तो उसे हिंदी के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। तो मित्रों, आज आपको एक आर्टिकल उपलब्ध कराया गया है। अब सवाल यह है कि आप इस आर्टिकल के साथ न्याय कैसे करेंगे। देखिए, चीजें वही होती हैं, किताबें वही होती हैं, आर्टिकल्स वही होते हैं, डेली ऑडियो लेक्चर वही होता है, उसे सुनने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन सब उसे अलग अलग ढंग से सुनते हैं, और जो जितने परफेक्ट तरीके से सुन और पढ़ लेते हैं उन्हें उतनी परफेक्ट सफलता भी मिल जाती है। तो याद रखिए, तो जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो भी सीधे सीधे पढ़ने की बात नहीं है, समझ कर पढ़ने की बात है, उसमें टाइम लगाने की बात है, उसको अंडरलाइन करने की बात है। अगर कोई उसमें ऐसी लाइन आ गई है आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, और ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है इसी में आपकी मदद करता है कि रोज की घटनाएं बता बता करके आपके दिमाग में बैकग्राउंड तैयार कर देता है किसी भी घटना को समझने के लिए, और जब वो घटना घटित होती है तो बकायदे जब आर्टिकल में आप पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड आपकी मदद करके आपको कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, वो एम्पावर्ड कर देती है। अब जैसे मान लीजिए कि सुरक्षा पर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपने सिलेबस को उठाकर देखें कि जो सुरक्षा पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आपका सिलेबस है वो है किस तरीके का, सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। सिलेबस में देख लेने के बाद फिर आपको चाहिए कि आप पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं मेंस के, उनको उठाकर देखें, और फिर ये सोच देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाले कि अच्छा, सिक्योरिटी से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में इमेज बन गया कि ठीक है, इस तरह का सिलेबस है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब तीसरे चरण पर आपके सामने ये आर्टिकल आता है कि सरकार के सामने सुरक्षा से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। आप करके देखिए, आज आप करके देखिए, इतनी बात मेरी मान लीजिए। और मैं ये अपराध ही कर रहा हूं कि आपसे एक घंटे का समय इसके लिए मांग रहा हूं, या चुरा रहा हूं, या आपके ऊपर दबाव डाल रहा हूं कि एक घंटे का वक्त आप मुझे दे दीजिए, केवल इस पैटर्न पर कीजिए। मैं पैटर्न दोहरा देता हूं, आप बकायदे अपने सिलेबस में देखिए, मेंस में, कि सिक्योरिटी से जुड़ी कौन कौन सी बातें कही गई हैं, क्या आपके सिलेबस में है। इसके बाद पिछले 3-4 साल में, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो थर्ड पेपर में आपका जनरल स्टडीज के आता है, उसमें देखिए कि सिक्योरिटी को लेकर के किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और थर्ड स्टेज में अब आप इस आर्टिकल को देखिए जो आज के करेंट कंटेंट में आपको प्रोवाइड किया गया है। प्लीज डू इट, कृपया आप इसे करें। और करने के बाद जो आप पढ़ाई में जो परिवर्तन महसूस करेंगे, प्लीज लेट मी नो, कृपया आप मुझे बताएं कि इस तरीके से पढ़ने पर अब जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो आपका अपना कितना हो पाया है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो चीज आप सुन रहे हैं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, वो आपका अपना कितना हो पा रहा है। क्योंकि अगर वो आपका अपना नहीं हो रहा है तो सुनना और पढ़ना व्यर्थ है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अनुरोध करूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक दिन ऐसा करें, और एक दिन नहीं, आज ही ऐसा करें, और शाम तक मुझे लिख करके भेजें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ठीक लगेगा तो फिर आप इस पैटर्न को कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर ठीक नहीं लगा तो आप अपने ढंग से अपनी चीजों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं इस आर्टिकल को पढ़ने का तरीका आपको बताऊं, लेकिन कल मैं आपको इसी आर्टिकल को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि आप इस आर्टिकल को समझेंगे कैसे। राइट मित्रों, तो बेहतर होगा कि आप अगर मेरे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम आर्टिकल को तो पढ़ ही लीजिए, ताकि मैं अगर जब कल अपनी बात कहूंगा तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग पर। दो क्लिपिंग्स मैं आज आपको बहुत खूबसूरत प्रोवाइड कर रहा हूं, दोनों ही टाइम्स ऑफ इंडिया के है। एक तो ये है कि इंडिया कैसे प्रॉस्पर करे या कैसे समृद्ध हो, और दूसरे का संबंध सिक्योरिटी से ही है। मेरी कोशिश होगी मित्रों कि इन दोनों का हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। ये दोनों इंग्लिश में हैं, और एक मैं बहुत अच्छा खूबसूरत आर्टिकल दैनिक भास्कर का आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं। इसमें एक महिला की कहानी है, वनमती सी, इसे आप जरूर पढ़िएगा। आपके लिए ये पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये आईएएस बनी तो 2015 बैच की आईएएस अफसर हैं। बहुत ही सामान्य परिवार से, सामान्य क्या, यूं कह लीजिए कि बहुत ही निम्न परिवार से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टि से, और उन्होंने इतनी बड़ी सफलता पाई। ये उनके संघर्ष की कहानी है, लेकिन याद रखिए कि इसमें उनके संघर्ष से बढ़कर कुछ दूसरी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई करने के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकती हैं। तो प्लीज इसमें से वो निकालने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य कहानी की तरह नहीं पढ़े, यार यार हाँ यार स्ट्रगल करते हैं तो हो जाता है, खूब मेहनत करनी चाहिए, ये सुनी सुनाई बातें हैं। मेहनत करनी चाहिए वो तो ठीक है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कैसे करनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शायद वो जानने को मिले। तो मित्रों, इस आर्टिकल को भी ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, अंत में ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे पास बहुत से ऐसे मेल आए हैं जिसमें आप सब ने डेली ऑडियो लेक्चर की सराहना की है, जो क्वेश्चंस प्री एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स पर प्रोवाइड किए गए हैं, उनके प्रति आप लोगों ने अपना विश्वास जताया है। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने बकायदे लिस्ट बना करके भेजी है कि इतने सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। और चंद्रकांत पटेल ने तो कमाल ही कर दिया है कि उन्होंने तो पूरे के डेली ऑडियो लेक्चर से लगभग 44 टॉपिक ऐसे निकाल करके भेजे हैं जिसका संबंध इस बार के प्री में पूछे गए जनरल स्टडीज के क्वेश्चन से है। तो चंद्रकांत पटेल, आपको तो मैं विशेष रूप से इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी मेहनत की। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, मेहनत तो एक जगह है कि आपने साल भर तक डेली ऑडियो लेक्चर को इतने वैज्ञानिक तरीके से सुना है, इससे यह सिद्ध होता है। तो इससे जो एक हार्ड लेबर करने वाले लोग होते हैं, जो फाइटर होते हैं, वो फाइटर मुझे आप में दिखाई दे रहा है। ईश्वर से आपके लिए मेरी विशेष प्रार्थना। तो जो जिन्होंने ईमेल भेजा है दोस्तों, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रविंद्र रामनगर मध्य प्रदेश से, शिवम मिश्रा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, रवि कुमार वाराणसी से, के बी मीना, सुधीर बिहाड़े, सौम्या, चंदन उपाध्याय, विंध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी मध्य प्रदेश से, प्राची दीमरी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से और राबिया नूर बरेली उत्तर प्रदेश से। चंद्रकांत पटेल का नाम मैं इससे पहले ले ही चुका हूं, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।